हॉल में जमी हुई खामोशी अब टूटने के कगार पर थी। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन हवा में तनाव इतना घना था कि जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। धीरे धीरे पूरा परिवार एक घेरे में आ गया। अविनाश और सुजीत भी अब सामने खड़े थे। दोनों के चेहरे पर झुंझलाहट, गुस्सा और एक अजीब सा अहंकार साफ दिख रहा था। अविनाश के बाजू में सुप्रिया खड़ी थी, चेहरा सख्त, आंखें तनी हुई, और दूसरी तरफ सुजीत के साथ नंदिनी, जिसके चेहरे पर अब डर कम और सच्चाई का बोझ ज्यादा था। चारों की नज़रें सीधे सुषमा देवी पर टिक गईं, जैसे वो उन्हें नहीं बल्कि अपनी जायदाद को देख रहे हों। वो नज़र इतनी ठंडी थी कि धानी के हाथ अपने आप कांप गए। तभी बस, एक तेज आवाज़ गूंजी। शकुंतला आगे बढ़कर सबके बीच आ खड़ी हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन आंखों में आंसू भी थे। सावधान रहो तुम लोग, उसने उंगली उठाकर सीधे अविनाश और सुजीत की तरफ इशारा किया। वो तुम्हारी कुछ नहीं होगी, उसकी आवाज़ कांपी लेकिन हर शब्द तलवार जैसा था। लेकिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मौसी जी सब कुछ हैं। हॉल में सन्नाटा फिर से गहरा गया। माँ से ज्यादा प्यार हमें इन्होंने दिया है, शकुंतला की आंखों से आंसू गिर पड़े। और उनका ये हाल, उसने दांत फींच लिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम लोग। अविनाश के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई, वो आगे बढ़ा। बहुत बोलने लगी हो तुम, उसकी आवाज में घमंड था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, रत्ना देवी की आवाज गूंजी, बस करो। सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ गईं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग थी। अगर ये सब विश्वनाथ को पता चला ना, उन्होंने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, तो वो तुम्हें रातों रात सड़क पर ला देगा। ये सुनते ही अविनाश और सुजीत दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल के लिए उनकी आंखों में डर साफ दिखा। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, रत्ना देवी ने आखिरी चेतावनी दी। लेकिन अहंकार इतनी जल्दी कहाँ टूटता है, सुजीत आगे बढ़ा। डराने की कोशिश मत करो, उसने ऊंची आवाज में कहा, ये सब हमारा हक है। हक? वीरेंद्र ने ठंडी हंसी छोड़ी, या जबरदस्ती? अब माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। चारों तरफ आवाजें गूंजने लगीं, इल्जाम, सवाल और तकरार। अविनाश अचानक शकुंतला के बहुत करीब आ गया। उसकी आवाज तेज और आक्रामक थी, तुम बीच में मत पड़ो। लेकिन तभी एक कदम आगे बढ़ा वीरेंद्र, उसने अविनाश के सामने खड़े होकर रास्ता रोक लिया। दोनों की आंख से टकराई, कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी थी। फिर वीरेंद्र ने धीमे लेकिन बेहद खतरनाक लहजे में कहा, साले साहब, उसके शब्दों में तंज था, थोड़ी दूरी बनाकर रखें, उसने हल्का सा आगे झुकते हुए कहा, वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। ये आपकी बहन है, उसने शकुंतला की तरफ इशारा किया, थोड़ी तमीज से बात करें। अविनाश कचपल के लिए चुप रह गया। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि सामने खड़ा आदमी डरने वालों में से नहीं है। सुजीत ने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रत्ना देवी ने एक नज़र सब पर डाली, फिर बोली, चलो। उनकी आवाज़ में फैसला था। वीरेंद्र ने तुरंत सुषमा देवी का हाथ पकड़ा। शकुंतला उनके दूसरे तरफ आ गईं। तीनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। धानी भी पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन रत्ना देवी ने उसे रोक दिया। तू यहीं रह, उन्होंने प्यार से कहा, अभी जरूरत नहीं है। दरवाजा खुला और कुछ ही पल में चारों बाहर थे। पीछे अविनाश, सुजीत, सुप्रिया और नंदिनी बस खड़े रह गए, हाथ मलते हुए, गुस्से में और सबसे ज्यादा बेबस। कार के अंदर गहरी खामोशी थी, सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर गुजरती सड़क। सुषमा देवी खिड़की के बाहर देख रही थी, आंखें खाली, जैसे सब कुछ खो चुकी हों। शकुंतला बार बार उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। वीरेंद्र ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ सड़क पर नहीं थी। वो सोच रहा था, ये लड़ाई अब यहीं खत्म नहीं होगी। पीछे सीट पर बैठी रत्ना देवी सब समझ रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब न जाने क्या होगा। वीरेंद्र ने हल्का सा सिर हिलाया, हाँ, और इस बार उसकी आवाज ठंडी थी, हम ध्यान रखेंगे। घर का दरवाजा खुला और जैसे ही सुषमा देवी अंदर आई, एक खुश आवाज गूंजी, अरे मौसी जी। शामली तेजी से उनकी तरफ भागी, उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी, जैसे घर में कोई अपना लौट आया हो। वो झुककर उनके पैर छूने लगी, आशीर्वाद दीजिए। सुषमा देवी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में पहली बार थोड़ी शांति दिखी। खुश रहो, उन्होंने धीमे से कहा। शामली ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया, आइए बैठिए। वो उन्हें सोफे तक ले गई। वीरेंद्र और शकुंतला भी पास आकर खड़े हो गए। कुछ पल तक घर में सुकून भरा माहौल रहा। फिर शामली ने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? उसके सवाल में चिंता थी। वीरेंद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर पूरा सच बताना शुरू किया, फाइल, प्रॉपर्टी, जबरदस्ती, धानी की बात, सब कुछ। जैसे जैसे वो बोलता गया, शामली का चेहरा बदलता गया, आंखों में हैरानी, फिर गुस्सा और आखिर में दर्द। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसने धीरे से कहा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। उसने सुषमा देवी की तरफ देखा, इतना सब और आपने अकेले सहा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। शकुंतला ने उसका हाथ पकड़ लिया, अब नहीं, उसने भरोसे से कहा, अब हम हैं इनके साथ। शामली ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सोच चल रही थी, कुछ ऐसा जो अभी किसी ने नोटिस नहीं किया। वीरेंद्र ने गौर से उसे देखा, क्या सोच रही हो, उसने सीधा सवाल किया। श्यामली कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर उन्होंने एक बार ये सब किया है, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन शब्द भारी, तो वो यहीं नहीं रुकेंगे। हॉल में फिर से खामोशी छा गई। सब समझ रहे थे ये सिर्फ शुरुआत है। और तभी दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई, जैसे कोई खड़ा हो, सब कुछ सुन रहा हो।